ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवतम के इस प्रातःकालीन सत्र में, और आज से हम एक नया अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं, षष्ठम स्कंद का चतुर्थ अध्याय। प्रजापति दक्ष द्वारा भगवान से की गई हंस गुह्य प्रार्थनाएं। इससे पिछले 19 अध्यायों में कई सारे चरित्रों का वर्णन हुआ है, और उनमें मुख्य जो आपने सुना अजामिल का प्रसंग, वो अब संपूर्ण हो गया है। किस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी ने नाम की महिमा का वर्णन अजामिल के प्रसंग में किया, और नाम महात्म्य की कितनी महिमा है और उससे जीव का कैसे कल्याण हो सकता है, इसका वर्णन पिछले अध्यायों में हुआ है। तो आज से ये चतुर्थ अध्याय शुरू हो रहा है। देखिए, षष्ठम स्कंद जो है श्रीमद् भागवतम के 10 लक्षणों में से एक लक्षण, जिसको कहते हैं पोषण। अतः सर्ग विसर्ग स्थानम पोषण, ये चतुर्थ लक्षण जो है पोषण, ये षष्ठम स्कंद उसको इंगित करता है। और पोषण का अर्थ होता है पोषणस्तद अनुग्रहात्। श्री भगवान का जीवों के ऊपर अनुग्रह, उनकी कृपा जो है उसको ही पोषण कहा गया है। इस ब्रह्मांड की सृष्टि भगवान अपनी इच्छा मात्र से कर देते हैं, और उसका संचालन करते हैं और उसका प्रलय भी करते हैं, परंतु संचालन के रूप में जब जीवों के ऊपर कल्याण किया जाता है, जीवों पर कृपा की जाती है, तब उस लक्षण को पोषण कहा जाता है, पोषणस्तद अनुग्रहात। तो इस पोषण के लक्षण में चतुर्थ अध्याय में षष्ठम स्कंद के हंस गुह्य प्रार्थना प्रजापति दक्ष के द्वारा श्री भगवान की स्तुति की गई है, ताकि आगे चलकर वो सृष्टि को और बढ़ा सकें। श्रीमद् भागवतम में आप यत्र तत्र देखेंगे कि अनेक अनेक भक्तों की स्तुतियां विद्यमान हैं अलग अलग स्कंदों के अंदर, और स्तुतियों का अर्थ ये होता है कि जो भक्त की अपनी व्यक्तिगत भावनाएं हैं श्री भगवान के प्रति, जो उसका भाव है, जिस भाव से वो श्री कृष्ण का भजन करता है, और भजन करने के बाद जब उसको अनुभूति होती है श्री भगवान की, यत्किंचित जो अनुभूति होती है, और जब शब्दों में उसको वो व्यक्त करता है, तो उसको अनुभूति, उसको स्तुति कहा जाता है। आप प्रथम स्कंद से ही देख लीजिए, और 12वें स्कंद तक कितने ही भक्त हैं जिन्होंने श्री भगवान की स्तुतियां की हैं। कुंती महारानी से शुरू हुई हैं, उसके बाद अन्य अन्य स्कंदों में कहीं पर भीष्म पितामह की स्तुति है, कहीं पर ये दक्ष प्रजापति की स्तुति है। तो ऐसे ये भागवत जो है स्तुतियों से भरा हुआ है पूरा, और वास्तविकता में भागवत का जो सार है वो स्तुतियों के अंदर ही है, क्योंकि भक्त का जो अनुभव है वही वास्तविकता में साधक को प्रेरणा देता है। जिन साधुओं ने, जिन महात्माओं ने बहुत अच्छा भजन करके कुछ अनुभूति प्राप्त की है, और कृपावश उन्होंने अपनी अनुभूति को शब्दों में व्यक्त कर दिया है, उन शब्दों को पढ़कर साधक समझ सकता है और उससे प्रेरणा ले सकता है कि इन्होंने जैसे भजन करके श्री भगवान को प्रसन्न किया, उसी तरीके से हम भी अगर प्रयास करें ईमानदारी से तो निश्चित रूप से श्री भगवान हमारे पर भी कृपा करेंगे और ऐसी वाणी हमारे हृदय में भी प्रकट होगी ताकि कभी ना कभी ऐसा कोई एक दिन आएगा कि हम भी भगवान की स्तुति कर पाएंगे। आचार्यगण अपनी टीकाओं में जिस प्रकार से श्रीमद् भागवतम के श्लोकों का व्याख्यान कर रहे हैं, श्रील सनातन गोस्वामी पाद हो चाहे श्रील जीव गोस्वामी पाद हो इत्यादि जितने भी प्रभृति आचार्य हैं, इन्होंने जिस प्रकार से कृष्ण लीला का या फिर भक्तों के चरित्रों का वर्णन किया है और अपनी टीकाओं में जिस प्रकार से अपने उद्गारों को व्यक्त किया है, ये सब की सब जो हैं ये आचार्यों की भक्तों की अनुभूतियां ही हैं जो कि उनके हृदय में प्रकट होती हैं। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, ये ज्ञान ऐसा है जो कि हृदय के अंदर प्रकाशित होता है। पोषणस्तद अनुग्रहात, इस षष्ठम स्कंद के अंदर पोषण का वर्णन है और पहले ही श्लोक से आप देखिएगा, मैं इसको पढ़ने जा रहा हूं, आप सुनिएगा, मैं चतुर्थ श्लोक जो है वो पढ़ूंगा, उसके बाद फिर आप मेरे पीछे बोलिएगा। देवसुर निराणाम सर्गो नागानाम मृग पक्षिणाम सामसिक अस्तव्याम प्रोक्तो यस्तु स्वयं भुवे अंतरे, ये प्रथम श्लोक है। तस्यैव व्यासम इच्छामि ज्ञातुम ते भगवन्नेथा अनुसर्गम ययाशक्त्या ससर्जम भगवान पर, ये दूसरा है। और इति संप्रश्नमाकर्ण्य राजऋषेर बादरायणी प्रतिनंद्य महायोगी जगाद मुनि सत्तमा, और आज का श्लोक है श्री शुक उवाच। यदा प्रचेतसः पुत्रा दश प्राचीन वर्ष अंत समुद्राद उद्मग्ना ददृशूर्गाम द्रुमेर वृतामह। बोलिए इसको, यदा प्रचेतसः पुत्रा दश प्राचीन वर्ष अंत समुद्राद उद्मग्ना ददृशुगा द्रुमे वृताम। इसका शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री शुक वाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यदा जब प्रचेतसः प्रचेताओं ने पुत्रः पुत्र दश दश प्राचीन बरहिश राजा प्राचीन बरही के अंतः समुद्रात समुद्र के भीतर से उन्मग्ना बाहर आए, ददृशु उन्होंने देखा गाम संपूर्ण लोक को, द्रुमे व्रताम वृक्षों से आवृत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब प्राचीन बरही के दसों पुत्रों पुत्र उस जल से बाहर निकले जिसमें वे तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि संसार की समूची सतह वृक्षों से ढक गई है। तात्पर्य, जब राजा प्राचीन बरही वैदिक अनुष्ठान कर रहा था जिसमें पशुओं की हत्या की संस्तुति की गई थी, तो नारद मुनि ने दयावश उसे सलाह दी कि इस अनुष्ठान को रोक दे। प्राचीन बरही नारद की बात भली भांति समझ गया, अतः वह राज्य छोड़कर तपस्या करने के लिए जंगल चला गया। किंतु उसके 10 पुत्र जल के भीतर तपस्या कर रहे थे, अतः संसार की व्यवस्था देखने वाला कोई न था। जब 10 पुत्र प्रचेतागण जल से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि पृथ्वी वृक्षों से ढक गई है। जब सरकार कृषि की उपेक्षा करती है जो अन्न उत्पादन के लिए आवश्यक है, वह भूमि व्यर्थ के वृक्षों से ढक जाती है। निस्संदेह अनेक वृक्ष उपयोगी होते हैं क्योंकि वे फल फूल उत्पन्न करते हैं, किंतु दूसरे अनेक वृक्ष अनावश्यक होते हैं। उनका उपयोग ईंधन के लिए किया जा सकता है और भूमि को साफ करके उसमें खेती की जा सकती है। जब सरकार लापरवाही बरतती है तो अन्नोत्पादन कम होता है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, वैश्यों के स्वभाव के अनुसार उनका उचित कार्य खेती करना तथा गौओं की रक्षा करना है। सरकार तथा क्षत्रियों का कर्तव्य है कि वे यह देखें कि तृतीय वर्ण के सदस्य वैश्य जो न तो ब्राह्मण है न क्षत्रिय ठीक से काम में लगे हैं। क्षत्रिय मनुष्यों की रक्षा करने के निमित्त होते हैं, जबकि वैश्य उपयोगी पशुओं विशेषतया गायों की रक्षा करने के निमित्त हैं। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपक कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। हरे कृष्ण। अध्याय का प्रारंभ ही है, इसलिए हंस गुह्य स्तुतियां अभी दक्ष प्रजापति के द्वारा जो की जानी है वो आगे कई श्लोकों के बाद आएंगी। यहाँ पर प्रचेतागण जो प्राचीन बरही के पुत्र हैं, जो कि तपस्या के लिए समुद्र के अंदर कितने 10,000 वर्षों की तपस्या के लिए निमग्न थे, अब ये बाहर समुद्र से आए हैं और इन्होंने देखा कि पूरी की पूरी पृथ्वी जो है वो वृक्षों से भर गई है। यहाँ पर विचार करने योग्य बात ये है, संपूर्ण भागवतम में आप देखिएगा इस बात को, हर जगह पर यह बात बोली जा रही है। प्राचीन बरही महाराज ने जब प्रचेता गणों को सृष्टि की वृद्धि करने के लिए कहा, तो सृष्टि की वृद्धि से पहले उन्होंने उनसे एक बात कही कि पहले तप करो जाकर, उसके बाद सृष्टि का वर्धन करना। इसी प्रकार से जब ब्रह्मा जी कमलनाभ पर कमल के ऊपर बैठे हुए, शुरुआत में बिल्कुल प्रारंभ में, उनको भी यही आज्ञा प्राप्त हुई है भगवान से कि दो बार शब्द सुनाई दिया, त और प। जो वर्णमाला है उसमें जो अक्षर हैं हिंदी के, 16वां अक्षर और 21वां अक्षर, 16वां अक्षर त है और 21वां अक्षर प है, तो ये तप शब्द जो है ये दो बार ब्रह्मा जी को सुनाई दिया है। तो ब्रह्मा जी ने विचार करके कि मुझे ये आज्ञा मिली है कि मुझे तप करना चाहिए, तो ब्रह्मा जी बहुत समय तक, अनेकों हजार दिव्य वर्षों तक ब्रह्मा जी तप के अंदर लगे और उसके बाद उनको श्री भगवान का दर्शन हुआ। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुह्यंति यत् सूर्य। जब भगवान का दर्शन हुआ, ठाकुर जी ने अपने लोक का दर्शन कराया, अपने श्री विग्रह का दर्शन कराया और वो सामर्थ्य प्रदान की जिससे कि ब्रह्मा जी इस सृष्टि को रच सकें। तो शुरुआत से देखिए, सृष्टि जब हुई भी नहीं है तब से तप का विधान है और आगे भी श्रीमद् भागवतम के कितने ही प्रसंगों के अंदर इस बात को स्थापित किया गया है कि जब तक मनुष्य तप में नहीं लगेगा तब तक उसका शुद्धिकरण होना असंभव सी बात है। श्री भगवान ने यहां पर बहुत सुंदर बात कही है, जिसको कि ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि प्रत्यादिष्टम मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिते तपो में हृदयम साक्षात आत्माहम तपोनघ। द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये भगवान स्वयं कह रहे हैं इस बात को कि तुम उस समय सृष्टि रचना का कर्म करने में किं कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे, इसी से मैंने तुम्हें तपस्या करने की आज्ञा दी है, क्योंकि हे निष्पाप तपस्या मेरा हृदय है, श्री भगवान का वचन है। भगवान कह रहे हैं तपस्या मेरा हृदय है और मैं स्वयं तपस्या का आत्मा हूं, मैं तपस्या से ही इस संसार की सृष्टि करता हूं, तपस्या से ही इसको धारण और पोषण करता हूं और फिर तपस्या से ही इसे अपने में लीन कर लेता हूं। तपस्या मेरी एक दुर्लंग शक्ति है। इतनी महत्वपूर्ण बात श्री भगवान ने यहां पर कह दी साधक को सोचने के लिए। साधक को समझना चाहिए कि अपने संपूर्ण जीवन के अंदर वो तप को, तपस्या को अपने जीवन में धारण करके रखे। श्रील प्रभुपाद जी ने जिस प्रकार से प्रातःकालीन जो ये कार्यक्रम बनाया है, मंगला आरती से लेकर श्रीमद् भागवतम कक्षा तक, ये एक प्रकार से साधक के लिए तप में आता है। क्योंकि सुबह सुबह प्रातःकाल उठना, सुबह 3:30 बजे या 3 बजे, ये शरीर की तपस्या है। जैसे भगवद गीता के अंदर श्री भगवान ने मन की तपस्या, वाणी की तपस्या और शरीर की तपस्या का वर्णन किया है, इन तीनों की तपस्या करते हुए साधक अगर अपना भजन साधन करता रहेगा तो निश्चित रूप से अंतःकरण शुद्ध होगा और शुद्ध होने के बाद फिर जो प्रेम रूपा भक्ति है, जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, वो उसके हृदय में आके स्थापित होगी। जो भी गुण है एक भक्त के अंदर जो होने चाहिए, ये सब जब व्यक्ति स्वतः से अपने आप को कष्टों में डालता है तो उससे क्या है कि उसका शुद्धिकरण होता है, उसके अंतःकरण का शुद्धिकरण होता है। और जब अंतःकरण का शुद्धिकरण होता है, जब वो पक जाता है, अच्छे से तप जाता है, तो फिर उसके बाद जो है उसका निखरना, वो कैसे निखर के बाहर आता है। जैसे सोना जो है दूषित जब मिट्टी में से निकाला जाए उस समय अपनी शुद्धतम अवस्था में नहीं है, परंतु जब उसको अग्नि में तपाया जाता है, खूब अच्छे से एकदम लाल कर दिया जाता है, उसके बाद उसका जो वास्तविक स्वरूप है वो बाहर निकलता है। तो ऐसे ही साधक भी अगर तप के निखरना चाहता है सोने की तरह, तो उसको अपने जीवन में तप को लेकर आना चाहिए, जितना हो सके तप को लेकर आना चाहिए। परंतु ये ध्यान रखिएगा, तप के साथ साथ जो है जो भक्ति का जो अंग है वास्तविकता में, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, इसको ना भूल जाए। ज्यादातर कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि व्यक्ति व्यर्थ के तपों में लगा रहता है, परंतु भगवत चेतना जो है वो उसकी शून्य हो जाती है, तो उस तप से इतना आपको लाभ नहीं होगा। तप के साथ साथ अगर आप श्रवण कीर्तन को साथ रखेंगे तो वो आपका जो लाभ करेगा उसका कोई भी मैच नहीं कहीं से भी। तो ब्रह्मा जी ने शुरुआत में जैसे तप किया और तप में जिस प्रकार का उन्होंने भगवान का स्मरण किया, जो भी उनको बताया गया था, उस कारण से ब्रह्मा जी को ये सामर्थ्य प्राप्त हुई कि वो सृष्टि की रचना कर सकें। प्रभुपाद जी दो बातों के ऊपर इस तात्पर्य के अंदर विशेष महत्व दे रहे हैं, वो ये है कि एक तो तपस्या बहुत आवश्यक है और ये हर किसी के लिए, साधक के लिए भी है और जो विभिन्न जो वर्ण बनाए गए हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इनके लिए भी बताई गई है। तो जो शासक है राज्य का या देश का, अगर वो भी तपस्वी होगा, और साथ में दूसरी बात जिसके ऊपर प्रभुपाद जी ने और विशेष ध्यान दिया है वो है गोरक्षा और वाणिज्य, अर्थव्यवस्था और गोरक्षा। शासक अगर तपस्वी है और साथ में गोवृत्ति है, उसका गोरक्षा में उसका बहुत मन है कि ऐसा होना चाहिए, तो निश्चित रूप से राष्ट्र की इतनी वृद्धि होगी कि उसका कोई मैच नहीं कर सकता है। बिल्कुल दोनों चीजों पे आवश्यक है, तपस्वी भी होना चाहिए शासक और उसके साथ साथ गोरक्षक भी होना चाहिए। आप अगर आप जानते हो इस बात को, भारत की जो स्वतंत्रता की जो लड़ाई है उसका जो मूल उद्देश्य जो था वो केवल और केवल गोरक्षा था। इस गोरक्षा के आधार पर ही भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई है, 1857 से शुरू हुई है। तो गोरक्षा इतना महत्वपूर्ण अंग है, इसके बिना राष्ट्र की वृद्धि नहीं हो सकती है। कोई राष्ट्र अगर अपने अपने को बहुत वर्धन करना चाहता है अपनी अर्थव्यवस्था में भी सभी प्रकार से, तो केवल एक कार्य करना शुरू कर दे कि जो गाय है उसकी रक्षा शुरू हो जानी चाहिए बस। अगर ऐसा करना शुरू कर देगा तो निश्चित रूप से राष्ट्र की वृद्धि हो जाएगी। आज देखिए ज़्यादातर जितने भी प्रशासक आते हैं देश के अंदर, उनका ध्यान जो है वो कृषि और गोरक्षा को बढ़ाने में इतना नहीं है जितना कि दूसरी प्रौद्योगिकी और टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में है। वो बाहर से नई नई तकनीक लेकर आएंगे किस प्रकार से, और सुविधाएं जो है वो लोगों को दी जाएं, परंतु ये बात भूल जाते हैं कि हमारा जो पुरातन भारत है उसकी जो नींव है, उसकी जो समृद्धि का कारण है वो केवल और केवल गोरक्षा और कृषि के ऊपर ही है बस, और कुछ नहीं है। और भारतवर्ष जो है ये मूल प्रधान जो है ये कृषि प्रधान देश है। अगर भारतवर्ष की जो कृषि व्यवस्था है ये अगर गो आधारित हो जाए तो ध्यान बहुत ही आसानी से और बहुत ही शीघ्रता पूर्वक हमारी अर्थव्यवस्था जो है बहुत ऊंची चली जाएगी। जितना आज के प्रशासक कितना प्रयास कर रहे हैं ना कि हमारा जो जीडीपी रेट है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो बहुत ऊंचा बढ़ जाए, इसका बहुत सीधा सा और बहुत सरल उपाय है, आप गोरक्षा करना शुरू कर दीजिए और कृषि आधारित, गो आधारित कृषि शुरू कर दीजिए, ये अपने आप हो जाएगा। बहुत सरल कार्य है। पहले के राजागण इतना ध्यान रखते थे, पहले के राजा छोड़िए आज से थोड़े साल पुरानी बात है, कुछ साल मतलब कुछ सौ साल, यहां तक कि अकबर के काल में भी जब मुगल शासन चल रहा था इस ब्रज 84 कोस के अंदर, वहां पर भी गोरक्षा का विधान था। अकबर ने यहां तक कह रखा था कि पूरे ब्रज 84 कोस के अंदर कोई भी गाय की हत्या नहीं करेगा। और आज राष्ट्र के अंदर ऐसी दयनीय स्थिति है कि भारत जो है गोमांस का सबसे बड़ा निर्यातक है। जिस भारतवर्ष को संस्कृति का मूल कहा जाता है, यहां से संस्कृति का उद्गम हुआ है, उस भारतवर्ष के अंदर गाय के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है। गाय का रक्त जितना पृथ्वी के ऊपर गिरेगा उतना ही विनाश होगा, उतना ज्यादा विनाश होगा। इसीलिए गोर संरक्षण ये शासक की सबसे महत्वपूर्ण उसका कार्य है जिसको करना चाहिए उसको। और जितने भी वर्ण आश वर्ण जो है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इसमें यहां तक कहा गया है शास्त्रों के अंदर कि ब्राह्मणों का ब्राह्मणत्व, क्षत्रियों का क्षत्रित्व और वैश्यों का जो कार्य है और शूद्रों का जो कार्य है, इन सब की रक्षा भी तभी होगी जब गाय की रक्षा होगी। शास्त्र में कहा गया है, बहुत सुंदर बात बोली है इन्होंने कि धेनुनाम कुल विप्राणाम कुलम एकम द्विविधाकृतम। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो ब्राह्मणों का कुल और गौओं का कुल एक ही बताया है। ब्राह्मणत्व की रक्षा कैसे होगी जब गौ की रक्षा होगी, क्यों? क्योंकि ब्राह्मण और गाय दोनों समान है। एक को उन्होंने गव्य के लिए स्थापित किया है और एक को कव्य के लिए स्थापित किया है। जिनको गव्य के लिए स्थापित किया है वो बन गई है गाय, और जिनको मंत्र के लिए स्थापित किया है वो बन गए हैं ब्राह्मण। क्योंकि ब्राह्मणों का कार्य है यजन याजन, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, और इसके अंदर गौ घृत की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। कोई भी मंगल कार्य आप देख लीजिए, उसमें बिना गाय के जो प्रोडक्ट्स जो हैं उनके बिना वो कार्य पूरा होगा नहीं। गाय के घी की, गाय के दूध की, गाय के दही की, इन सब चीजों की आवश्यकता हर मंगल कार्य में होती है। और जब तक गाय की रक्षा नहीं होगी तब तक न ब्राह्मणत्व बचेगा न क्षत्रियत्व बचेगा। पुरातन काल में क्षत्रिय इतने सजग रहते थे इस बात के लिए कि किसी भी तरीके से गाय के ऊपर कोई हानि ना हो जाए। आप सबने पढ़ा है कथा, सबको पता है श्रीमद् भागवतम में नृग महाराज की कथा है। एक गाय इधर से उधर हो गई है, उनकी कोई गलती भी नहीं है इसके अंदर, गिरगिट बनना पड़ गया उनको। और आज तो इतनी नृशंस हत्या हो रही है गाय की, सोचिए कहां जाएगा देश। और ये संसार कहां जाएगा? जितनी गोरक्षा हो जाएगी उतना ही समृद्धवान बनेगा संसार, ये पृथ्वी, और जितनी गो की हत्या होती जाएगी और विनाश की तरफ चलता जाएगा। अभी तो कुछ विनाश हुआ नहीं है, थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है, आगे और कुछ होने वाला है इससे ज्यादा। शास्त्र यहां तक कहता है कि भूकंप जब आता है उसका कारण यही है कि गौ माता के जब अश्रु इस पृथ्वी पे गिरते हैं ना, उस कारण से भूकंप आता है। तो गोरक्षा इतनी महत्वपूर्ण है, शासकों ये बात समझनी चाहिए, तपस्वी रहे और साथ में गोरक्षा करे, दोनों बातें बहुत ही आवश्यक हैं। और देखिए शास्त्र में क्या क्या बात कही गई है इतनी इंपॉर्टेंट इस गोवंश के बारे में। लक्ष्मी की कृपा किसको नहीं चाहिए बताइए? कोई है ऐसा जो लक्ष्मी की कृपा नहीं चाहता? धन कोई नहीं चाहता? कोई है ऐसा? चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी है ऐसा जो लक्ष्मी की कृपा नहीं चाहता? हाँ कि ना? आप सब मूक बैठे हैं तो इसलिए पूछना पड़ रहा है मुझे। चाहते हैं ना? हाथ खड़ा कर दीजिए कोई भी हो तो। यहां तक समझ लीजिए कि साधुओं को भी लक्ष्मी की कृपा चाहिए, क्योंकि कलयुग है ये और लक्ष्मी के बिना कोई कार्य होता नहीं है। एक कथावाचक कथा कह रहे, कथा संपन्न हुई तो जो यजमान थे उन्होंने उनको दक्षिणा दी। पुराने समय की बात है, उस समय इतना ज्यादा धन नहीं दिया जाता था, दिए होंगे 1100 रुपए ऐसे कुछ। तो उन्होंने उसको हाथ में लिया और देखा, वो 1000 का चमचमाता नोट एकदम बढ़िया। तो उन्होंने देखा और बोला, बोले तू भगवान तो नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं है, ठीक है। तो इतनी आवश्यकता है, कलयुग है ये, इसमें धन के बिना कार्य होता नहीं बिल्कुल किसी भी कार्य। मंदिर निर्माण करना है धन चाहिए, भंडारा करना है धन चाहिए, हाँ विग्रह स्थापित करना है धन चाहिए, अनेक कार्यों के लिए, चाहे वो भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, धन कहीं ना कहीं जरूरी है। तो लक्ष्मी की कृपा हर किसी के लिए, किसी को चाहिए। अब लेकिन ये देखिए कि लक्ष्मी तो हम सबको चाहिए निश्चित रूप से, लेकिन लक्ष्मी जी की क्या वांछा है, लक्ष्मी जी क्या चाहती हैं, वो किसके सानिध्य में जाना चाहती हैं? बहुत विशेष बात, महाभारत के अनुशासन पर्व के अंदर ये कथा आई है बहुत सुंदर, कि लक्ष्मी जी गो माता के पास गई। अनुशासन पर्व में कथा है ये, लक्ष्मी जी गो माता के पास गई और गो माता से कहा कि आप कृपया करके आप हमें अपने अंदर स्थान दीजिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि गो माता में 33 कोटि देवी देवता और सभी का निवास स्थान, ऋषियों का, मुनियों का, सबका निवास स्थान गो माता के अंदर है। हा? तो ये सब ने तो स्थान ले लिया, अब गो माता के पास लक्ष्मी जी गई क्योंकि थोड़ा पीछे रह गई, अंत में गई वहां पर। तो बोले कि आप हमें भी स्थान दीजिए। तो गो माता ने कहा, भाई आप तो नारायण की पत्नी हैं और इतनी समृद्ध हैं, आपको हमारी आवश्यकता क्या पड़ गई? हाँ, तो लक्ष्मी जी ने कहा कि देखिए ऐसा है, हमें आप अपने में स्थान देंगी तो निश्चित रूप से हमारा और गौरव बढ़ेगा। हाँ, पहले लक्ष्मी जी ने अपना इंट्रोडक्शन कराया है कि मैं अध्रुवा हूँ, चंचला हूँ, हाँ ये सब तरीके से। तो गौ माता ने कहा कि देखिए ऐसा है, आप कृपया करके, क्योंकि आप अध्रुवा और चंचला हैं, कहीं पर आप एक जगह टिक के रहेंगी नहीं, इसलिए कृपा करके आप कोई और स्थान ढूंढ लीजिए, हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। एक गौ माता पूरी सृष्टि के अंदर ऐसी निकली है जिनको लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं है, लक्ष्मी को गौ माता की आवश्यकता है। तो लक्ष्मी जी ने प्रार्थना की कि अगर आप हमें स्थान नहीं देंगी अपने में तो निश्चित रूप से मैं अवज्ञाता हो जाऊंगी, इवन नारायण भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर आपने मुझे स्थान नहीं दिया। तो गौ माता ने कहा, देखिए हमें वैसे आवश्यकता तो नहीं है, क्यों, और हम स्थान ना भी दें नहीं देंगी आपको, क्यों, क्योंकि आप अध्रुवा हैं और चंचला हैं, बहुत टिक के रहेंगी नहीं आप, और हम तो सूखी रूखी घास खाकर अपने जो सेवक हैं उनको दूध इत्यादि प्रदान कर देती हैं और आराम से रहती हैं, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। ये देखकर लक्ष्मी जी का अहंकार चूर हुआ कि ये देखिए अपने सेवक को हर चीज प्रदान करने वाली गोमाता के अंदर कितना दैन्य है, कितनी विनम्रता है, और मैं वैसे ही मरी जा रही हूँ ऐश्वर्य के अंदर। तो लक्ष्मी जी का अहंकार कम हुआ और उन्होंने कहा कि आप कृपा करिए हमारे ऊपर ताकि हम आप में निवास स्थान आप में स्थित रह सकें। तो गोमाता ने कहा ठीक है, अगर आप अचंचला होकर रह सकती हैं, चंचला का अर्थ है जो एक जगह टिकती नहीं है, लक्ष्मी जी टिकती नहीं है एक जगह पर, कहीं आज हैं कहीं नहीं है, तो बोले अगर आप अचंचला होकर रह सकती हैं तो आप हमारे गोबर और गोमूत्र में स्थापित हो जाइए। तो लक्ष्मी जी को स्थान दिया गोमाता ने गोबर और गोमूत्र में, वहां स्थापित हैं। वहां स्थापित होने के कारण इसीलिए पंचगव्यों में जितने भी पदार्थ गाय के बताए गए हैं, बोले इन सब का इतना महत्व है जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकता है। यहां तक कि ये बात बताई गई है किसी का हृदय अगर बहुत कठोर हो ना, बहुत कठोर हो और बहुत उसको गुस्सा आता हो, क्रोधित हो जाता हो बहुत जल्दी, वो व्यक्ति गाय की सेवा करे, पंचगव्य और पंचामृत का सेवन करे, गौ के साथ रहे केवल 6 महीना, 6 महीना ये कार्य करके देख ले, गौ के साथ रहे और पंचगव्य और पंचामृत का सेवन करे और गौ सेवा करे, 6 महीने के अंदर उसका हृदय इतना कोमल हो जाएगा कि सारी कठोरता हृदय से निकल जाएगी। ये गौ माता के पंचगव्य और गोमृत का इसका प्रभाव है। ये कठोर हृदय कौन चाहता है बताइए? जो साधक है वो तो कभी भी कठोर हृदय नहीं चाहता, हर कोई यही चाहता है कि हमारा हृदय कोमल रहे, और कोमल हृदय में ही भगवान प्रवेश करते हैं। पत्थर जैसा होगा, फौलाद जैसा, कहां भगवान आएंगे वहां पर बताइए? कोमल हृदय में ही तो आएंगे ना। संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत मतलब मक्खन की तरह होगा तभी तो भगवान आएंगे वहां पर। तो कठोर हृदय से कोमल हृदय बहुत ही हर किसी को प्रिय लगता है। किसी व्यक्ति का रूप बहुत सुंदर हो परंतु स्वभाव जो है बहुत कठोर हो वो ज्यादा भाता नहीं है किसी को, लोग डरते हैं उससे, पता नहीं कब क्या कह दे। परंतु अगर स्वभाव बहुत सुंदर है और रूप बहुत सुंदर नहीं है तो भी लोग उसका आदर करते हैं। तो व्यक्ति का स्वभाव अगर सुंदर हो जाए, हृदय बहुत कोमल हो जाए, तो निश्चित रूप से उसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाएगी, साधक के रूप में कह रहे हैं। तो गोमाता की इतनी महिमा, केवल पंचगव्य का सेवन करें, पंचामृत का सेवन करें, गौओं की सेवा करें, देखिए 6 महीने के अंदर ये प्रभाव देखने को मिल जाएगा। इतना प्रभाव है, शास्त्र में तो इतनी महिमा कही गई है गौ माता की जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात और देखिए, कोई भी मंगल कार्य हो, विवाह इत्यादि या नाम संस्कार, नामकरण संस्कार, इतने जितने भी 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है शास्त्र के अंदर, इन सब में कहीं ना कहीं पर गोमाता के किसी ना किसी पदार्थ की आवश्यकता होती है। विवाह संस्कार में आप देखिएगा, पुराणों में वर्णन है इस प्रकार से, और विधियों में भी विवाह संस्कार जब होता है तो प्रथम किसका पूजन होता है आप जानते हैं? किसका पूजन किया जाता है सबसे पहले? हाँ जी, बहुत विवाहित बैठे हैं यहां पर सब, किसी ना किसी का तो पता होगा, गणेश जी का, गणेश जी का पूजन होता है। तो गणेश जी की जो मूर्ति बनाते हैं वो किससे बनाते हैं जानते हैं? हाँ, गोबर से बनाते हैं। कितना वो बड़ा राजा हो चाहे इतना धनवान हो, वो जो मूर्ति जो है वो बनेगी गोबर की। ये गोमाता की प्राथमिकता ये है, इसका इंपॉर्टेंस। और देखिए गणेश जी, शास्त्र में तो यहां तक लिखा है इतने सारे देवता हैं, इन देवताओं में गणेश जी प्रथम पूज्य बने कैसे हैं? इसी तरीके से बने हैं। कई जगहों पर वर्णन है इस प्रकार से कि श्री शिव पुराण में तो वर्णन इस प्रकार से है कि गणेश जी प्रथम पूज्य बने हैं अपने माता पिता शिव जी और पार्वती जी की पूजा कर। नारद पुराण में वर्णन है कि गणेश जी प्रथम पूज्य बने हैं श्री भगवान के नाम के कारण, नाम की पूजा कर। और अन्यत्र पुराणों में वर्णन इस प्रकार से है कि ब्रह्मा जी के पास सारे देवता गए और उन्होंने प्रश्न किया कि हमें से प्रथम पूज्य कौन होगा, तो ब्रह्मा जी ने कहा जो सृष्टि की सबसे पहले परिक्रमा लगा के आ जाएगा वो प्रथम पूज्य माना जाएगा। तो सारे के सारे देवता जो है अपने वाहनों पर बैठकर सृष्टि की पूरी परिक्रमा लगाने निकल लिए। अब गणेश जी वैसे भी बुद्धि के देवता हैं, हाँ, तो उन्होंने बुद्धि लगाई, बोले देखो एक तो हम वैसे ही भारी हैं, हाँ, ऊपर से हमारा वाहन जो है वो भी बहुत ज़्यादा तेज चलता नहीं है, मूसक, हाँ, तो उन्होंने बुद्धि लगाई, बोले कि ये पृथ्वी जो है ये भी तो गो स्वरूप है ना, पृथ्वी गोमाता है, तो उन्होंने सीधे गोमाता जो है वो पृथ्वी के स्वरूप में, तो उन्होंने गोमाता को स्थापित किया, उनको प्रणाम किया और उनकी चार परिक्रमा लगा के आके ब्रह्मा जी के सामने खड़े हो गए। और जब परिक्रमा लगा रहे हैं तो सारे देवता तो अपने वाहनों पे चल रहे हैं, खूब रफ्तार से चल रहे हैं, और हर किसी को यही नजर आ रहा है कि हमारे से आगे गणेश जी जो है पैदल चल रहे हैं और हमसे आगे चल रहे हैं, उनको यही दिख रहा है सिर्फ। तो ये उनको प्रथम पूज्य का जो स्थान है वो इसीलिए मिला है क्योंकि उन्होंने गौमाता की पूजा की है, उन्होंने गौमाता को प्राथमिकता दी है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा करेगा निश्चित रूप से वो इतना संवर्धित हो जाएगा, उसको किसी बात की कोई कमी नहीं होगी। अरे यहां तक तो छोड़ दीजिए, ये तो देवताओं की बात हो गई, स्वयं भगवान भी। हमारे इष्ट कौन है आप जानते हैं? कौन है हमारे इष्ट, हमारे उपास्य कौन है? राधा कृष्ण है ना, कृष्ण भगवान है ना, हमारे उपास्य है भगवान कृष्ण, और भगवान कृष्ण की भी उपास्य है गोमाता। भगवान गोमाता की पूजा करते हैं, गोचारण इत्यादि लीलाओं में आप देख लीजिए कितना प्रेम करते हैं गोमाता से। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, धेनु शब्द आया है बीच में, गायों के लिए विशेष रूप से भगवान ने इस जगत में मनुष्य अवतार लिया है। और बाल लीला में आप देखिए जब पूतना वध हो गया उसके बाद सारी गोपियां, उन्होंने गोपियों ने यशोदा मैया को डांटा, बोले गोपियों ने कहा यशोदा मैया कि हम तो अभी तक इसलिए शांत बैठी थी कि हमें लगता था कि तुम बालकृष्ण की जो है ठीक से देखभाल कर पाओगी, लेकिन अब हमारा विश्वास तुम्हारे ऊपर से उठ गया है, अब बालकृष्ण की रक्षा हम करेंगी। तब बालकृष्ण को लिया गोद में और कहाँ चली, गौशाला में। अब वहां क्या किया देखिए आप, साधारण मनुष्य की तो बात छोड़ दीजिए, स्वयं भगवान भी गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनः गोरजसार भकम। अब क्या हो रहा है, बाल कृष्ण का अभिषेक हो रहा है गोमूत्र से। किसी ने किया है गोमूत्र से अभिषेक आज तक, बताइए अपना किया है कभी? ठाकुर जी करा रहे हैं। और इतना ही नहीं, इसके बाद पूरे शरीर में गोपर लेप दिया गया, इतना प्रेम करते हैं ठाकुर जी देखिए गोमूत्र और गोबर से, ठीक है। और उसके बाद गोरज जो है गाय माता के जो खोरों की जो रज है वो ठाकुर जी के ऊपर पूरी छिड़क दी गई, और गौ माता की पूंछ से फिर झाड़ा भी दिया गया है। तो ठाकुर जी अशुद्ध हो गए पूतना के स्पर्श से, तो शुद्ध करने के लिए गौ माता की रज, गौ माता का गोमूत्र और गोबर और पूंछ का झाड़ा, ठाकुर जी को शुद्ध करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी है। जब ठाकुर जी को इस बात की आवश्यकता है तो सोचिए जन सामान्य को क्यों नहीं होगी। जन सामान्य को तो अपने जीवन में इसको पूर्ण रूपेण धारण कर लेना चाहिए, नित्य प्रति ऐसा करना चाहिए। यहां तक बताया गया है, बोले भूत प्रेत तक की अगर बाधा होना किसी व्यक्ति के जीवन में, नित्य रूप से अगर उसको गोमूत्र और गोबर से स्नान करा जाए और पंचगव्य उसको पिलाया जाए, तो भूत प्रेत की बाधा वहां रह नहीं सकती, उसको छोड़ना पड़ जाएगा शरीर। उस व्यक्ति को जिसके अंदर भूत प्रेत की बाधा है, उस प्रेत आत्मा को वो शरीर छोड़ना पड़ जाएगा, रह नहीं सकता है वहां पर बिल्कुल भी, इतना पवित्र है। गाय की रज और गोमूत्र और ये सब चीज, इसलिए गाय की महिमा। मैं सिर्फ इतना ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रभुपाद जी ने इसका उल्लेख इस तात्पर्य के अंदर किया है। प्रभुपाद जी ने स्वयं इस बात पे इतना जोर दिया कि इस्कॉन संस्था के अंदर विभिन्न विभिन्न जगहों पर फार्म कम्युनिटीज बनाई जाएं, गोरक्षण हो, गोपालन हो ज्यादा से ज्यादा, ताकि हम लोग आत्मनिर्भर बन सकें। जब कृषि व्यवस्था गो आधारित होगी और बाहर के जो कृत्रिम फर्टिलाइजर्स जो कि फसल के अंदर प्रयोग होते हैं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति भी नष्ट हो जाती है और जो फसल होती है वो सारी की सारी जहर से युक्त होती है, तो ऐसा करने पे व्यक्ति जो है उसकी उसका जो मानसिक विकास नहीं हो पाएगा। जब तक शुद्ध पदार्थ नहीं लेगा तब तक चिंतन कैसे करेगा ठीक। तो प्रभुपाद जी ने इस बात की व्यवस्था की कि आप अपनी स्वयं की फार्म कम्युनिटीज बनाइए, गोपालन कीजिए जितना हो सकता है, जितना ज्यादा हो सकता है, और उसमें कृत्रिम फर्टिलाइजर नहीं, जो गोबर इत्यादि जो खाद है इसका प्रयोग कीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो भूमि भी उर्वरा होगी और जो फसल की उत्पत्ति होगी वो इतनी अच्छी और इतनी सुंदर होगी, उससे व्यक्ति का जो है शारीरिक विकास होगा और बौद्धिक और मानसिक विकास होगा, तीनों की आवश्यकता, तीनों चीजें जो है अपने आप संवर्धित हो जाएंगी। और बहुत सारे ऐसे देशों में आज भी जहां पर इस्कॉन संस्था स्थापित है, जिन्होंने इस बात को समझा है, उन्होंने ऐसी जो कम्युनिटीज हैं इनको स्थापित किया है और आज वो इसका लाभ उठा रहे हैं। एक बहुत छोटा सा देश है, वहां पर पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था जो है ना वो गो आधारित है, बहुत छोटा सा देश है। उन्होंने ये बात भारत से देखी, उन्होंने भारत में शोध किया और उसके बाद उन्होंने देखा कि जो भारतीय देसी गाय है इसके पालन और पोषण से हमारी अर्थव्यवस्था जो है बहुत आसानी से बढ़ सकती है। पीछे के शास्त्रों को भी उन्होंने अध्ययन किया और आज वो इतने समृद्ध हो गए हैं कि उनको और दूसरे किसी देशों से किसी बात की और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। सेल्फ अपने आप में समृद्ध हैं वो लोग, क्योंकि वो भारतीय देसी गाय का संवर्धन करते हैं, उनका पालन करते हैं और उनका रक्षण करते हैं। फिजिशियन होलिस्टन जर्सी गाय को यूज नहीं करते, वास्तविकता में ये जो नाम मैंने बोले जर्सी और इत्यादि, ये सब गाय है भी नहीं, ये सिर्फ एक प्रकार का गाय जैसा देखने वाला पशु है, ये गाय है नहीं। एक महात्मा बता रहे थे, वे बोले कि हम बाहर गए और बाहर के देशों में ज्यादातर तो ये जर्सी गाय देखने को मिलती है, भारतीय देसी गाय तो दिखती नहीं है। आप हैरानी मानेंगे, ज्यादातर आजकल जर्सी गाय का दूध पीने को मिलता है, भारतीय देसी का तो मिलता ही नहीं है बिल्कुल। और जर्सी जो बोला गया है ये ऐसा पशु है जो कि एक तो मिश्रण से बनाया गया है और इसके सामने अगर चारे में आप मांस के टुकड़े डाल के रख देंगे ना तो वो भी खा जाएगा। और भारतीय देसी गाय के सामने आप मांस डाल के देखिए, सूंघ के साइड हो जाएगी बिल्कुल। ये जर्सी ऐसा पशु है, इसके दूध के अंदर DNA-7 नाम का एक प्रकार का ऐसा विषैला पदार्थ है जिसके सेवन से जो छोटे छोटे बच्चे जो है अभी जन्म लिए हैं या फिर 5 वर्ष की आयु से कम है, इन सब के अंदर कैंसर होने लग गया है इस पशु के दूध से। और भारतीय देसी गाय का दूध आप पिलाइए छोटे छोटे बच्चों को, इतना समृद्ध हो जाएंगे, बुद्धि का भी विकास होगा और हर प्रकार से उनका शारीरिक बल भी बढ़ेगा। इतनी महिमा गाय की शास्त्र में दी गई है जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकता है। स्वयं भगवान जो है गाय के पीछे पीछे चल रहे हैं, आनंदित हो जाते हैं कृष्ण। गोविंद को गायन में बसिवो ही भावे, आगे गाय पीछे गाय इत गाय उत गाय, हमेशा गायों में ही गोविंद रहते हैं हमेशा। 9 लाख गैया हैं नंद महाराज की, सुबह गोचारण करने निकलते हैं, यहां तक बताया गया है बोले जैसे आप हम सब माला करते हैं ना हरे कृष्ण महामंत्र की ऐसी ठाकुर जी ने भी अपनी एक माला बना रखी है, उसपे पांच प्रकार का गोवंश है अलग अलग प्रजाति के नाम से, कोई कवरी गैया है, कोई धौली गैया है, कोई चितकवरी है, कोई कैसी है, इन सब के हिसाब से यूथ बने हुए गायों के, और उन यूथों में जितनी गायें हैं उन सब की ठाकुर जी गणना करके फिर वो एक मन का खिसका देते हैं नीते की हाँ पूरी गिनती है, पूरी गिनती है, ऐसे करके जब लेकर जाते हैं तब गिनते हैं और जब वापस आते हैं उसके बाद गिनते हैं कि एक भी गाय या एक बछड़ा इधर उधर ना हो जाए। और स्वरूप देखिए ठाकुर जी का, जब गोधूली लीला में जब वापस आते हैं, प्रेम कितना है कि पूरा जो अंग है सर्वांग जो है वो गोधूली से सना हुआ है, ऐसा बताया गया। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रद वासम कनक कपिशम वैजयंती चमालम रंध्राणम वेणु अधरम सुदया पूर्णयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। ये भगवान के सौंदर्य का वर्णन है। ये तब का वर्णन है जब श्री कृष्ण सुबह सुबह गायों को लेकर गोष्ठ से वन में जाते हैं, ऐसा सुंदर वर्णन है बहुत। और जो भी देखता है श्री कृष्ण को वो अचल हो जाता है, बिल्कुल स्थगित हो जाता है, कुछ भी और सोचने और समझने की क्षमता उसकी खत्म हो जाती है, क्योंकि रूप लावण्य और रूप सौंदर्य इतना है जो कि नव नवायमान है, कोटि कोटि चंद्रमाओं की कांति को भी विलज्जित कर देने वाला है, इतना सुंदर स्वरूप है। और सिर्फ ऐसा स्वरूप एक समय ही नहीं है, आपने एक समय वो स्वरूप देखा, एक क्षण देखा, दूसरी समय जब आप पलक झपक के दूसरी समय दूसरी बार देखेंगे वो स्वरूप जो है कोटि गुणा और बढ़ चुका होगा, इतना आनंदमय स्वरूप है। इसलिए तो ब्रजवासी अघाते नहीं है, नयन उनके दर्शन को नैना तपे वचन सुनन को कान मिलवे को हियरा तपे जिय के जीवन प्राण गोवर्धन वासी सावरे तुम बिन रहो न जाए। ऐसे हैं ठाकुर जी, इतने सुंदर, और पल पल जो है सौंदर्य बढ़ता चला जाता है। जब गोष्ठ से निकल रहे हैं सारी गोपियां खड़ी हुई हैं साथ में, इधर उधर से देख रही हैं, आपस में चर्चा कर रही हैं कि देखिए कितना सुंदर स्वरूप है और हमारा सौभाग्य है। जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रही। क्या कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, देखिए इतना सुंदर स्वरूप प्रकट हुआ है ब्रज के अंदर श्री भगवान का कि जो चंचला लक्ष्मी है जो कहीं पर भी टिकती नहीं है, उस चंचला लक्ष्मी ने अपना निवास स्थान इस ब्रज को बना लिया है, अब इस ब्रज से बाहर निकलना नहीं चाहती है, इतना सुंदर स्वरूप है भगवान का। देख देख के ब्रजवासी अघा नहीं रहे हैं कि हमें क्या प्राप्त, सौंदर्य निधि प्राप्त हो गई है हमें। तो श्री कृष्ण जब गोष्ठ से निकलते हैं सब ब्रजवासी गण इतना आनंद ले रहे हैं उस सौंदर्य माधुरी का कि उनके हृदय में ये चीज समा नहीं रही है, और वो हृदय का जो भाव है वो नेत्रों से अश्रुओं के रूप में बाहर निकल रहा है। अब जब श्री कृष्ण निकल जाते हैं गोष्ठ से तो दिन कैसा बीतता है गोपियों का और ब्रजवासियों का, इसकी तो महिमा ये तो वाणी का विषय है नहीं। अब क्या हुआ, जो आनंद गोष्ठ में दिया है ब्रजवासियों को, अब ठाकुर जी वो आनंद वन के अंदर पशु पक्षियों को दे रहे हैं। और इतने में जब गोष्ठ से वन में पहुंचे तो वो सौंदर्य जो है कोटि गुणा और बढ़ गया है। अब मनुष्य की तो छोड़िए, गाय मृग इत्यादि पशु जो हैं वो देखते हैं, अगर कोई बछड़ा गाय का दूध पी रहा है तो पी नहीं पाता है, फिर थन मुख के अंदर है तो बस मुख के अंदर ही है, वो दूध जो है पी नहीं पाएगा। मृग अगर अपनी मृगियों के साथ खड़े हैं, क्या सुंदर उदाहरण दिया है सुखदेव गोस्वामी ने कि ये जो हिरणिया जो है ये वास्तविकता में गोपियों से ज्यादा सौभाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि गोपियों के जो पति हैं उनके साथ अगर वो हैं तो कृष्ण को देख नहीं सकती हैं इतना आसानी से। क्यों? क्योंकि पति साथ में खड़े हुए हैं। परंतु मृगियों के जो मृग साथ में खड़े हैं वो मृग कुछ नहीं कह रहे, बोले देखो जितना देखना है कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो भी आनंद ले रहे हैं और वो भी आनंद ले रही है। इतना आनंद है, इतना आनंद बरस रहा है। अब श्री कृष्ण वन में गोचारण कर रहे हैं, सबको आनंद दे रहे हैं, वृक्षों को भी आनंद दे रहे हैं। किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं तो अगर फलदार वृक्ष है तो अपने आप से अपना फल उतार के ठाकुर जी को दे देता, बोले खा लो। ऐसे कोई ऐसे सेवा कर रहे हैं। गिरिराज देखिए, गिरिराज के बारे में बताया गया, बोले हरिदास वर्य। हरिदासों में सबसे उच्चतम स्थिति गिरिराज की है। फल फूल प्रदान करते हैं, यमुना जी का जल प्रदान करते हैं, छाया प्रदान करते हैं, इतने सारे पत्ते इत्यादि श्रृंगार के लिए प्रदान करते हैं, हर प्रकार से शैया प्रदान करते हैं, हर प्रकार से श्री कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं और सबको ठाकुर जी आनंद दे रहे हैं। अब होता क्या है, जब श्री कृष्ण वन से गोष्ठ में आने के लिए विचार करते हैं अपनी गौओं को लेकर, जब श्री कृष्ण वन से गोष्ठ में आते हैं तो जितने भी वन्य पशु हैं ना वो श्री कृष्ण के साथ साथ चलते हैं, साथ साथ चलना शुरू करते हैं कि ये सौंदर्य निधि जो है इन्होंने इतना आनंद दिया हमें आज, तो और आनंद का पान किया जाए। साथ चलते रहते हैं और मुख को देखते रहते हैं। अब मुख देखते हैं, देखते देखते क्या होता है कि वन की सीमा आ जाती है, वन जहां समाप्त हो रहा है और गोष्ठ जहां शुरू हो रहा है। अब वन्य पशुओं का अधिकार नहीं है गोष्ठ में जाने का, अब अधिकार गोष्ठ में जाने का नहीं है, तो क्या है कि वन की सीमा पर रुक जाते हैं। और वहां रुक के जब श्री कृष्ण थोड़ा सा आगे निकलने लगते हैं तो उनसे वो विरह जो है वो सहन नहीं होता। श्री कृष्ण का विरह उन पशुओं से सहन नहीं होता है, हालांकि वो पशु ही उन्हीं के व्यक्ति हैं, परंतु फिर भी उनके अंदर इतना उनके अंदर भाव है, इमोशंस उनके अंदर भी हैं श्री कृष्ण को देखकर। तो वहां पर वो खड़े हो जाते हैं वन की सीमा पे और श्री कृष्ण को देखकर इतने विरहातीत होकर इतना रुदन करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। परंतु ठाकुर जी भी क्या करें, उनकी भी मर्यादा है, तो ठाकुर जी उनको आश्वासन देते हैं कि कोई बात नहीं, आज आप यहीं पर विश्राम कीजिए, मैं कल दोबारा से आऊंगा आपके पास, मैं कल आपके पास दोबारा आपको दर्शन देने के लिए और आपको आनंदित करने के लिए मैं फिर आऊंगा। तो श्री कृष्ण की लीला इस प्रकार से गोपी इत्यादियों को, गोपांगनाओं को, गायों को, पूरे ब्रजवासियों को आनंदित करने के लिए ही इस जगत में हुई है, ताकि हर एक प्रकार का जीव जो है वो श्री कृष्ण से आकर्षित हो जाए और अपना जीवन जो है सफल कर सके। जब इस प्रकार की लीलाओं का श्रवण व्यक्ति करता है, साधक करता है, तो उसका हृदय जो है पूर्ण रूपेण कोमल हो जाता है, कोमल होता है, उसके अंदर दैन्य आता है और दैन्यता ही वास्तविकता में भक्ति का आसन है। भक्ति महारानी वहीं पर विराजमान होती हैं जहां पर दैन्य होता है, विनम्रता जिस व्यक्ति के हृदय में है तो भक्ति महारानी आपके कर्ण से प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, भगवान की कथा और भक्ति महारानी आपके कानों से आपके हृदय में प्रवेश करेंगी और वहां पर खोजेंगी कि आपके हृदय में दैन्य का आसन है कि नहीं है। अगर दैन्य विराजमान है आपके हृदय में, दैन्य का आसन है, तो भक्ति महारानी वहां पर जाकर स्थापित हो जाएंगी, अगर नहीं है तो वहीं से दोबारा से फिर बाहर निकल जाएंगी। तो भक्ति की ये सब सर्वप्रथम शर्त है किसी व्यक्ति के अंदर, अगर वो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, अच्छे कोटि का साधक होना चाहता है, तो अपने जीवन में दैन्य लेकर आए, दैन्य लेकर आए। जिस प्रकार से गोमाता के अंदर दैन्य, देखिए किसी से कुछ लेती नहीं है, अगर लेगी भी तो उसको हजार और दस गुना हजार बढ़ा के दे देगी, ये है गौ माता की महिमा। तो दैन्य लाना आवश्यक है जीवन के अंदर। ये मैं उदाहरण इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि वास्तविकता में गौ जो है वो स्वयं इतना एग्जैक्ट उदाहरण है किसी व्यक्ति के लिए कि उससे सीखना चाहिए, सीख हर हर चीज से सीखना। जैसे दत्तात्रेय ने सीखा ना, 24 गुरु बनाए उन्होंने, मधुमक्खी से भी सीखा, अविवाहिता स्त्री से भी सीखा, इधर से भी सीखा, इधर से भी सीखा। तो साधक को तो जहां से शिक्षा मिले अच्छी, वहां से उठा लेनी चाहिए। अगर दैन्य देखना है तो देखिए, गाय के अंदर दैन्य विनम्रता होती है बहुत। तो इस विनम्रता के आसन को अपने हृदय के अंदर स्थापित कर लीजिए, और फिर उसके बाद अगर आप भजन करेंगे तो देखिए कैसे आपकी वृद्धि होगी भजन के अंदर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह आपका अनुभूत विषय बन जाएगा फिर, हरे कृष्ण महामंत्र जो भी हम करते हैं ना बैठकर, अनुभूति कम होती है, अनुभूति होना शुरू हो जाएगी जब व्यक्ति दैन्य के साथ महामंत्र जप करेगा। और एक बात बहुत आवश्यक है, जैसे मैंने बताया कि गो संवर्धन गोरक्षा जो है इसकी आवश्यकता है देश के अंदर, और ये सब ये कार्य जो है न केवल प्रशासकों का या सरकार का नहीं है, ये साधकों का भी कार्य है। इसके लिए हम लोग एक प्रण ले सकते हैं, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र आप जप करते हैं 16 माला प्रभुपाद जी के द्वारा प्रतिपादित, अगर गोरक्षण भी चाहते हैं गो संवर्धन भी चाहते हैं तो इसके लिए भी कम से कम 4 माला करना शुरू कर दीजिए। गौ माता के लिए 4 माला करना शुरू करेंगे, निश्चित रूप से भगवान प्रेरणा देंगे इस प्रकार की, जो आज इस देश के अंदर इतनी दयनीय स्थिति है गायों की, वो निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी। और जैसे ही गो संवर्धन और गोवर्धन होना शुरू हुआ, इस कली का प्रभाव इस पृथ्वी से हट जाएगा। इतना महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो भी व्यक्ति कर सके, करना ही चाहिए हर किसी को, अगर करें तो 4 माला कर सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र की करिए तो देखिए अपने आप इसका प्रभाव पड़ने लग जाएगा। हरे कृष्णा।